ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये जहन की आवाज़ है। काउंटडाउन नहीं है ये कोई। हारमोनियम की कीज़ की तरह कुछ गाने काले सफ़ेद से मेरे अंदर बैठ गए हैं। यूँ लगता है कि सांसों की आवाजाही पर ये तरंगित हो उठते हैं। कभी काली पट्टी दब जाती है, कभी सफ़ेद। इन गानों को याद करना नहीं पड़ता, बस उन पट्टियों को छेड़ना भर पड़ता है।
जमाना उसे का मोहब्बत में जो गया हो किसी।
सुबह सुबह ओपी नैयर का एक तराना मेरा पूरा दिन खूबसूरत बना देता है। स्वर्णिम काल के वो शानदार संगीतकार और उनका मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत, इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को। आह, परम आनंददायक। यद्यपि ओपी नैयर किसी का भी पांव थिरका देने वाले अपने जोशीले संगीत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं उनके इसी तरीके के दर्द भरे रंजीदा गाने भी पसंद करती हूँ, जो बिलाशक ये साबित करते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो गंभीर किस्म के नगमे कितनी कुशलता से बना सकते हैं। ओपी की विलक्षण शैली से बहुत अलग इस गाने के बोल HS बिहारी ने लिखे हैं, जिनके साथ 60 के दशक में ओपी नैयर का साथ हमें बहुत से खूबसूरत नगमे दे गया। नई ताजगी के साथ हिंदी फिल्म म्यूजिक की दुनिया में प्रवेश करने वाले आकर्षक और जिंदा दिल ओमकार प्रसाद या ओपी नैयर एक दशक से ज्यादा हिंदी फिल्म संगीत के बादशाह बने रहे। ओपी के पांव थिरका देने वाले ट्रेडमार्क म्यूजिक ने एक बिल्कुल नई परिपाटी डाली, जो अपने मौलिक धुन संरचना की वजह से संगीत जगत पर हावी हो गई। हिंदी फिल्म म्यूजिक के उन स्वर्णिम वर्षों में परंपरागत संगीत और पाश्चात्य संगीत के संगम से अलग ही तरह का अद्भुत प्रभाव पैदा करने वालों में ओपी अग्रणी संगीतकार थे। ओपी उस दौर के संगीत के आकाश के सबसे चमकीले सितारे थे। सिर्फ नए प्रयोग कर लेने की क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी कि वो पहले संगीतकार थे जिन्होंने आशा भोसले की आवाज़ में अब तक छुपी हुई सेंसुअलिटी को पकड़ा। वही पहले संगीतकार थे जिन्होंने रफ़ी की आवाज़ की कुदरती विलक्षणता का पूरा 360 डिग्री इस्तेमाल किया। उनके गानों का गहरा रोमांटिक होना उनके व्यक्तित्व से ही उपजा लगता है। पैर थपथपाने पर मजबूर करने वाली धुनें, वाद्य यंत्रों का चतुराई से किया गया इस्तेमाल, थोड़ा सा पंजाबीपन, ये सब मिलकर उनके गानों में एक ताजगी और जोश भर देते थे जो अब तक चल रहे परंपरागत हिंदी फिल्मी संगीत का चेहरा बदलने के लिए पर्याप्त था। उनके बनाए गंभीर भावनात्मक एकल गीतों में भी एक तरह की गतिशीलता है, वेग है। डुएट्स के तो वो मास्टर ही थे। युगल गीतों के लिए अब तक के सबसे महान संगीतकारों में ओपी का नाम लिया जाता है। इसकी तीन खास वजहें समझ में आती हैं। पहला, बीट्स, बोल, थीम और वातावरण के हिसाब से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव। दूसरा, यूनिक रिदम या ताल। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कोई एक स्पेशल फीचर जैसे पुरुष या महिला गायक में से किसी एक का गाने में देर से प्रवेश करना, जिससे गाना शुरुआती तौर पर सोलो लगे और सुनने वालों को आश्चर्य में डालते हुए एकदम से डुएट में तब्दील हो जाए। एक तरह से फ्यूजन म्यूजिक बनाने वालों के पुरखे हैं ओपी। यही नहीं, ओपी पंजाब का होने की वजह से पंजाबी संगीत के इतने दीवाने थे कि ऐसे गाने जो आराम से वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल पैटर्न पर चल जाते, उनमें ढोलक और तबला ले आते हैं। ये भी एक नए तरह का प्रयोग कहा जाएगा, जैसे कि एक खुश दिल सी धुन।
जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी।
या फिर हावड़ा ब्रिज की ये नशीली धुन।
आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान।
इसमें जैज बैंड का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत मजे से बोंगो की जगह अंतरे में तबला ले लेता है। एक ढर्रे पर चलने वालों को ये सुसंगत नहीं लगेगा, लेकिन ओपी के लिए यही प्रयोग उन्हें बहुत कुछ दे गया और इसी की वजह से वो आज भी समकालीन कहे जा सकते हैं, ना कि उनके अन्य समकालीनों की तरह रेट्रो। नया दौर जैसी फिल्मों में नैयर के गानों में थाप बहुत मजबूती से उभरता है, जो ज्यादातर पंजाबी लोक धुनों की बीट्स का प्रभाव है।
रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का।
ओपी थाप देने वाले देसी विदेशी बहुत से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने स्पेन, इटली या पुर्तगाल के संगीत में इस्तेमाल होने वाले कैस्टानेट की भी आवाज़ ली है। अगर कोई सारंगी और तार शहनाई हंस सकती थी तो वो नैयर की ही होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि शहनाई और सारंगी को उनके परंपरागत धीमे सुरों से आज़ाद करके उनसे अलहदा काम लिया ओपी ने। हवाइन गिटार तो उनका पसंदीदा व्यावादी यंत्र था। अधिकतर इसका प्रयोग वो तरंग या पानी की लहरों की आवाज़ का प्रभाव पैदा करने के लिए करते थे। बांसुरी और शहनाई की मधुर धुनों को ओपी ने चतुराई से गानों में पिरोया है। उनके पास अब्दुल, राम सिंह और गंगाराम जैसे शहनाई वादक थे जिन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया। ओपी के संगीत में रईस खान का सितार, राम नारायण की सारंगी, पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर और हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी ना होती तो चार चांद कैसे लगते। उनके मुख्य सहायक सेबेस्टियन ऑर्केस्ट्रा को व्यवस्थित करते थे। तबलची जी एस कोहली ताल बनाने में मदद करते थे, लेकिन पूरी संगीतबद्धता और ऑर्केस्ट्रेशन का आखिरी निर्णय हमेशा ओपी नैयर खुद लिया करते थे। अक्सर सोलो पीस वो खुद कंपोज किया करते थे, इसलिए जाहिर तौर पर उन सोलो पीसेस पर ओपी की स्पष्ट छाप है, क्योंकि वो कंपोजिशन का काम बाहर से आयातित या आउटसोर्स नहीं करते। अपनी शर्तों पर काम करने की भी उनकी अनेक कहानियाँ हैं। फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण सामने है। शक्ति सामंत उनके पास एक फिल्म का आइडिया लेकर आए और उनसे अलग अलग मूड के 8 गाने बनाने के लिए कहा, जिसके इर्द गिर्द वो पूरी फिल्म की कहानी लिखना चाहते थे। ओपी की शर्त यही थी कि गाने के फिल्मांकन में वो स्वयं रहेंगे। यही हुआ भी, अंजाम हमारे सामने है। एक ऐसी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर जिसके सारे गाने सुपरहिट रहे। आशा भोसले की अभूतपूर्व रेंज और रफ़ी की अलौकिक प्रतिभा से गुथा नैयर का संगीत ही वो धुरी है जिस पर पूरी फिल्म, उसकी स्वीकार्यता, उसकी सफलता टिकी हुई है। कश्मीर की सुरम्य वादियों में फिल्माई गई इस फिल्म में शम्मी के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही कली जैसी ही खूबसूरत शर्मिला टैगोर थी। लेकिन आइसिंग ऑन द केक तो ओपी का म्यूजिक ही है। कभी न थकने वाले शम्मी, उनके जोश से भरा खिलंदरपन, शर्मिला की मासूमियत, उनके गालों के गड्ढे और इन सब के बीच सुरीला साम में बैठा था लोक धुनों की मिठास लिए आशा के निर्दोष सुर और रफ़ी की नशीली आवाज़ के साथ क्लासिकल वाद्य यंत्रों पर सजा ओपी नैयर का संगीत। आह, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर पर, उस्ताद रईस खान सितार पर और पंडित राम नारायण सारंगी पर हों तो किस किस्म का जादू होता है, उसकी वानगी है इस फिल्म का जादुई संगीत। इसमें कोई शक नहीं कि रफ़ी को प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ा हाथ नौशाद का है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि रफ़ी 1954-55 में आर पार की सफलता के बाद जितने बहुमुखी गायक के रूप में पहचाने गए उतना उससे पहले नहीं। उनके करियर ग्राफ पे अगर नज़र डालें तो नौशाद के साथ भी वो एक ही तरीके के क्लासिकल गानों के लिए रूढ़िबद्ध हो गए थे। ये ओपी ही थे जिन्होंने उनके गायन के हर पक्ष को उभार कर सामने लाने में मदद की, उन्हें हल्के फुल्के, खुशनुमा, रुमानी, जीवंत गाने देकर। अगर नौशाद का साथ रफ़ी का पैर जमाने के लिए आधार बना तो ओपी का आना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 50 के दशक की ओपी रफ़ी की जोड़ी ने जो संगीत पैदा किया उसने रफ़ी को आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा व्यस्त और चहेता गायक बनाए रखा। आज का गाना उस एल्बम से है जिसे अगर पसंदीदा गाना चुनने को कहा जाए तो मैं पूरे एल्बम को ही चुन लूंगी। ये फिल्म गानों पर पांव थिरकाने से बने निशान की तरह है और गाने धरती के स्वर्ग कश्मीर के सौंदर्य पर लिखे कसीदों की तरह। सभी 8 गाने HS बिहारी की शानदार शायरी, OP नैयर के अलौकिक संगीत और सूर्य कुमार के जानदार नृत्य निर्देशन की वजह से त्रिगुणात्मक सौंदर्य से भरे हुए हैं। 3 डुएट हैं फिल्म में। तीनों डुएट्स को देखते हुए आप मंत्रमुग्ध रह जाते हैं कि कितनी नाजुक अदा से शम्मी शर्मिला के साथ प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि शम्मी अपनी उछल कूद और पूरे शरीर को हिला देने वाले डांसिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी उस उमंग को सूर्य कुमार ने सोलो गानों में खुली छूट दी है। रफ़ी की क्लासिक आवाज़ में डल झील में शिकारे पर शम्मी कपूर ये चांद सा रोशन चेहरा गाते अपने क्लासिक अंदाज में डांस करते, तारीफ करते, उन्मादित होकर ताली बजाते बजाते अंततः झील में कूद ही जाते हैं और गाने को हमेशा के लिए अमर नौका नृत्य बोट बैले बना देते हैं। उन दिनों OP हजारा सिंह को गिटारिस्ट के रूप में लिया करते थे। इस गाने और फिल्म के गिटार बेस्ड अन्य गानों में भी उनके गिटार का जादू भरा पड़ा है।
किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा।
गाने की खास बात उसकी रेंज है। गाने का मुखड़ा नीचे के सुर पर है और अचानक अंतरे में ऊंचे नोट्स पर चला जाता है।
दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ली प्याने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल।
जिसके सघन संगीत में सितार, सारंगी, बांसुरी और मैंडोलिन सब हैं और ये सब तांगे की चाल के साथ ताल बनाते हुए एक अजब समा बांध देते हैं। बहुत ही कर्णप्रिय गाना है। गाना राग मालगुंजी पर आधारित है। इस गाने का शुरुआती टुकड़ा, समापन का टुकड़ा, इंटरल्यूड पार्ट, कोमल लय और रफ़ी आशा की संवेदनात्मक गायकी सब मिलकर इसे एक मधुर, संपूर्ण और लगभग दोष रहित डुएट बना देते हैं। आशा OP की सिग्नेचर स्टाइल में गाने के दूसरे अंतरे में सुनाई देती हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर हुए एक सर्वे जिसमें 50 से 70 के दशक के बीच सबसे बेहतरीन युगल गीत का चुनाव किया जाना था, उसमें इसे ही विजेता घोषित किया गया।
इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहां से।
गाना राग पहाड़ी पर आधारित है। इस गाने में बोल, शब्दों का थ्रो, उनका उच्चारण, उस्ताद रईस खान के बजाय सितार के इंटरल्यूड के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है इस गाने का ट्रिपल मीटर। इस फिल्म के एक गाने
बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर।
पर फिल्म रिलीज होने के एक हफ्ते बाद कैंची चल गई। पहले पूरा गाना सेंसर से पास हो गया था, फिर अचानक एक हफ्ते बाद ये कहते हुए कि शर्मिला का दुपट्टा उड़ते हुए उनके सिर तक पहुंचने वाले सीन में अश्लीलता है, सेंसर बोर्ड ने इसे फिल्म से हटवा दिया। सेंसर तो उस गाने के हटने का कारण बना। ऐसे और भी गाने रहे जो पूरा बनने के बाद भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किए जा सके। OP नैयर एक ही फिल्म के लिए कई गाने बना देते थे, सब एक से बढ़कर एक, और अक्सर ऐसा हो जाता था कि फिल्म की लंबाई, कहानी या किसी अन्य कारण से कुछ बहुत अच्छे गाने फिल्म में लिए जाने से रह जाते थे। ऐसा ही OP आशा डियो का एक अविस्मरणीय गाना है,
चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी।
ये गाना फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। OP और आशा के बीच बढ़ती खाइयों की वजह से फिल्म नया दौर की सफलता के बाद से ही OP नैयर आशा को संवारने में लगे रहे। आशा भोसले लता की प्रतिस्पर्धा में अपना करियर मजबूती से बना सकी उसके पीछे ओपी नैयर का बहुत बड़ा योगदान है। अंतर मन को छू लेने वाला ये उदास गाना एक गहरी पीड़ा से भरा हुआ है। गाने की धुन बहुत सरल लगती है, दिल छू लेने वाली, दुख से भर देने वाली। ताल पियानो के सुर और चर्च की घंटियों की आवाज के साथ मिली हुई है। बहुत कम ऑर्केस्ट्रा और बीच बीच में बांसुरी की तान, दो सुरों के बीच में बेजुबानी को रेखांकित सा करती हुई खामोशी। ये खामोशी ओपी और आशा के बीच बंद होते वार्तालाप, बढ़ती दूरियां और टूटते संबंध की खामोशी भी है। खैर, कश्मीर की कली फिल्म के अन्य गानों के बराबर
है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का।
इस गाने को उतनी तवज्जो नहीं मिलती। एचएस बिहारी के बोल, ओपी का अंतर मन छेड़ देने वाला म्यूजिक, महान वादक मनोहारी सिंह के अद्भुत सैक्सोफोन पीसेज और रफी की नशीली आवाज। गाने का माहौल देखिए, बंद होता हुआ बार, आखिरी जाम, अनमयस्क सा साकी, चुनिंदा बचे खुचे हम प्याला साथी और ये नशीला गाना। गाने की अंदर बाहर की पूरी सेटिंग इतनी कमाल है कि इसे सुनते ऐसा लगता है रफी अभिनय करने लगे हैं और शम्मी लगे हैं गाना गाने। गाने की शुरुआत कपेला मुखड़े से है। इसमें बिना म्यूजिक के गाना गाया जाता है। मुखड़ा बिना किसी वाद्य यंत्र के बजे गाते हैं रफी। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, इसे देख ना रहे हो, तो बस इतना ही अनुमान लगा सकते हैं आप कि गाना उदासी का है। जैसे ही मोहब्बत पर आते हैं रफी, एकदम से पता चल जाता है कि स्क्रीन पर इसे गाने वाला शख्स नशे में है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है गाना, इसके बोल, म्यूजिक और आवाज मिलकर एक दिल छू लेने वाले फलसफे में डुबा देते हैं आपको, जिसका नशा अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। गाने में सैक्सोफोन के पीसेस के साथ इंटरल्यूड और पोस्टल्यूड हैं। ऐसा लगता है संगीतकार ने यह कसम खा रखी हो कि वो सुनने वाले की खुमारी उतरने नहीं देगा। और उसकी कमाल की सेंसिबिलिटी देखिए कि वो रफ़ी की आवाज़ और सैक्सोफोन को एक साथ नहीं बजाता, जिससे सुनने वाले को एक ही तरीके का नशा हो। अंतरे के बीच बीच में बहुत ही मादक सैक्सोफोन बजता है। कभी कविता में डूबी हुई रफ़ी की नशीली आवाज़ तो कभी सैक्सोफोन, नशा उतरने नहीं पाता। इस गाने को इश्क, नशे और शम्मी के आइकॉनिक अंदाज को निभा सकने वाली जुम्बिश के साथ रफी के अलावा कौन गा सकता था भला। गाने का सबसे ऊंचा नोट बहुत शार्प G4 और निचला D3 है। D3 से G4 इतनी बड़ी रेंज रफी की काबिलियत साबित करने के लिए काफी है। ओपी नैयर की सामान्य स्टाइल से अलग लगते इस गाने में भी ओपी उतनी ही स्वभावगत विलक्षणता के साथ मौजूद हैं जितना कि किसी और गाने में। उन्होंने दर्द को कितना सजीला, कितना अभिलाषित, कितना रोमांटिसाइज कर दिया है। ये गाना आपको अजीब से सूफी फलसफे में ले जाता है। अच्छे संगीत से मिलने वाले आनंद से, सुकून से, सकारात्मकता से रूबरू कराता है। और यही गाना क्यों, ओपी के बनाए अधिकतर गाने ऐसी ही सकारात्मकता से भरे हुए हैं। सच ही कहते थे ओपी नैयर, एक रोज मैं हर आंख से छुप जाऊंगा, लेकिन धड़कन में समाया हुआ हर दिल में रहूंगा। दुनिया मेरे गीतों में मुझे याद करेगी, उठ जाऊंगा फिर भी इस महफिल में रहूंगा। तो अगर प्रेम की पुलक में हो आप, पहले प्यार की याद में हो, किसी असफल प्रेम के दर्द में हो, या अभी इंतजार में हो इस अजीब सी शय को महसूसने के, तो इस गाने को सुनिए, लुट जाने का लुत्फ उठाइए, बर्बाद हो जाने की अदा सीखिए, दर्द मोहब्बत की दवा लीजिए और ओपी की संगीत के प्रति दीवानगी का एहतराम कीजिए।